डैनियल की पुस्तक संख्या 181, मध्य रात्रि की पुकार और रोम की भविष्य सूचक भूमिका। दानियल की पुस्तक में अंतिम दिनों का रहस्योद्घाटन।
दानियल अध्याय 11 के भीतर भविष्यवाणी की कई पंक्तियां हैं जो सब की सब अध्याय की अंतिम 6 आयतों के साथ संरेखित होती हैं। वो भाग जो सन 1989 में अंत के समय से लेकर 41वीं आयत के रविवार व्यवस्था तक 40वीं आयत के इतिहास के साथ संरेखित होता है, भविष्यवाणी का वही भाग है जो अंतिम दिनों तक मुहरबंद रखा गया था। ये यीशु मसीह के प्रकाशन के प्रति दानियल का पूरक है, जो अनुग्रह अवधि के समाप्त होने से ठीक पहले खोला जाता है। दूसरी आयत ट्रंप का परिचय कराती है, जो अंतिम रिपब्लिकन राष्ट्रपति, अंतिम राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति हैं जो सातों में से निकला हुआ आठवां है और वो सबसे धनी राष्ट्रपति है जिसने 2015 में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते समय वैश्विकतावादियों को उद्वेलित करना आरंभ किया। दसवीं आयत 1989 की पहचान कराती है और 11वीं तथा 12वीं आयतें यूक्रेनी युद्ध की पहचान कराती हैं जो 2014 में आरंभ हुआ, जिसमें पुतिन की विजय और उसके पश्चात उसका पतन सम्मिलित है। 13वें से 15वें पद 40वें पद की तीन लड़ाइयों में से तीसरी का वर्णन करते हैं जो 1989 में सोवियत संघ के पतन से आरंभ होकर फिर यूक्रेन युद्ध और अंततः पनियम के युद्ध तक पहुंचती है। पनियम का यह युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका में धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद के विश्व के वैश्विकवादियों के विरुद्ध बाहरी संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद हावी हो जाता है और शीघ्र आने वाले रविवार कानून के साथ लागू की जाने वाली त्रिविध एकता के पदानुक्रमिक संबंध को स्थापित करता है। पशु कैथोलिकवाद है और वही तीन शक्तियों की प्रमुख है जिसे इजेबेल तथा अन्य प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है। वही व्यभिचारिणी है जो पशु पर सवार होकर उस पर शासन करती है। झूठा भविष्यद्वक्ता संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसका प्रतिनिधित्व उसके पति अहाब द्वारा किया गया है, जो अजगर के 10-भागीय राज्य का मुखिया है। 200 ईसा पूर्व में पेनियम का युद्ध वैश्वीकरण और धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद के बीच बाहरी संघर्ष का प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। आंतरिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व 66 ईसा पूर्व के विद्रोह द्वारा किया गया है, जिसके पश्चात 66-900 ईसा पूर्व में हनुक्का द्वारा स्मरण किए जाने वाले मंदिर के पुनः समर्पण का समय आया। इसके बाद 66-41 ईसा पूर्व से 115 ईसा पूर्व तक की एक अवधि आई जो उस स्थिति का प्रतिरूप है जहां संयुक्त राज्य अमेरिका कलीसिया और राज्य के कैथोलिक संघी की एक प्रतिमा खड़ी करता है जिसका प्रतिनिधित्व लीग द्वारा किया गया है। 13वें पद में ओडिया स्मिथ हमें बताते हैं कि राफिया के युद्ध के 14 वर्ष बाद टॉलेमी असंयम और व्यभिचार के कारण मर गया और उसके बाद उसका पुत्र टॉलेमी एपिफेनेस, जो तब 4 या 5 वर्ष का बालक था, उसके स्थान पर आया। एंटियोकस इसी समय अपने राज्य में विद्रोह को दबा चुका था और पूर्वी भागों को अधीन कर व्यवस्थित कर चुका था। अतः जब युवा एपिफेनेस मिस्र के सिंहासन पर बैठा, तब वो किसी भी उद्यम के लिए स्वतंत्र था। पुतिन की अल्पकालिक विजय समाप्त हो जाने के बाद ट्रंप मिस्र के नए शिशु राजा से निपटने के लिए तैयार होगा। ऐसा करने से पहले वो संयुक्त राज्य अमेरिका के भी दक्ष एक विद्रोह को दबा दिया होगा। जब ट्रंप निर्वाचित होंगे तो वे ऐसे कानून लागू करेंगे जिनकी मिसाल 1758 के एलियन एंड सिडिशन एक्ट्स में मिलती है। साथ ही हैबियस कॉर्पस को निलंबित करेंगे, जैसा कि गृहयुद्ध के जवाब में पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने किया था। उनकी कार्रवाइयों की मिसाल राष्ट्रपति ग्रैंट की कूक्लक्स क्लान से निपटने वाली कार्रवाइयों में एफडी रूजवेल्ट द्वारा द्वितीय जिमीग्राफी में जापानियों और अन्य को कैद करने में और जॉर्ज बुश आखिरी वाले के पैट्रियट एक्ट में भी मिलती है। वह सेल्यूकस की तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्रोह का दबा देगा और फिर अपनी नज़र मिस्र के बालक राजा की ओर मोड़ेगा। ऐसा करते हुए वह मैसेडोन के फिलिप के साथ एक गठबंधन करेगा, क्योंकि स्मिथ लिखते हैं उसी समय मैसेडोन का राजा फिलिप एंटियोकस के साथ एक संधि में शामिल हुआ ताकि वे टॉलेमी के राज्यों को आपस में बांट लें। प्रत्येक ने प्रस्ताव रखा कि जो भाग उसके सबसे निकट और उसके लिए सबसे सुविधाजनक हों वे वो ले ले। यह दक्षिण के राजा के विरुद्ध ऐसा उठ खड़ा होना था जो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए पर्याप्त था, और निस्संदेह वही घटनाएं थीं जिन्हें भविष्यवाणी ने अभिप्रेत किया था। ट्रंप रूस से न पिटने तथा पुतिन के पतन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जटिलताओं के समाधान के लिए नाटो संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रों के साथ एक दृढ़ गठबंधन स्थापित करेगा। उस समय पद 14 के अनुसार और स्मिथ की टीका के अनुसार एक नई शक्ति का परिचय कराया जाता है, पोप सत्ता, रूस और उसके अधीनस्थ राष्ट्रों को नाटो और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार से बचाने के लिए हस्तक्षेप करेगी। या जैसा कि स्मिथ की टीका उद्धृत करती है, रोम ने कहा और सीरिया तथा मकदनिया ने शीघ्र ही अपने स्वप्न के दृश्य पर एक परिवर्तन आते हुए पाया। रोमियो ने मिस्र के युवा राजा के पक्ष में हस्तक्षेप किया, ये निश्चय करके कि उसे अंतियुखुस और फिलिपुस द्वारा रची गई बर्बादी से सुरक्षित रखा जाए। ये 200 ईसा पूर्व की बात थी, और सीरिया तथा मिस्र के मामलों में रोमियो के प्रथम महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में से एक था। रोम टायर की वेश्या तब अपने गीत गाना शुरू करती है और पृथ्वी के राजाओं के साथ व्यभिचार करती है, उन राजाओं के उसके प्रति पूरी तरह आज्ञाकारी बनने से पहले ही, जो बस दो पद बाद होता है। उसी समय पैनियम का युद्ध हुआ। 200 ईसा पूर्व वो वर्ष है जब टायर की वेश्या अपने गीत गाना शुरू करती है, और वो ऐसा रूस की रक्षा के संदर्भ में करती है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने अपने पारस्परिक लाभ के लिए अभी अभी विभाजित करने पर सहमति की है। वेश्या उन दोनों पर भारी पड़ती है, परंतु उत्तब पैनियम का युद्ध होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र पर विजय प्राप्त करता है। प्रतीकात्मक रूप से 35 वर्ष बाद मोदीन का विद्रोह संयुक्त राज्य अमेरिका में आरंभ होता है। प्रतीकात्मक रूप से उसके 3 वर्ष बाद तथाकथित प्रोटेस्टेंटवाद और एक संवैधानिक गणराज्य का पुनः समर्पण स्थापित किया जाता है, जैसा कि हनुक्का द्वारा निरूपित है। प्रतीकात्मक रूप से उसके 3 वर्ष बाद यहूदियों की रोम के साथ की गई संधि द्वारा निरूपित काल आरंभ होता है। अंतिम घटनाक्रम बहुत तेज होंगे, इसलिए श्लोकों में प्रस्तुत 48 वर्षों का इतिहास तीव्र घटनाओं की एक श्रृंखला का वर्णन कर रहा है, जिसे भविष्यवाणी ने विशेष रूप से 1979-43 में अंत के समय पर शुरू होने के रूप में चिन्हित किया है। उसके बाद 2014 में 11वें और 12वें श्लोकों में उल्लिखित दूसरी लड़ाई, और फिर 2015 जब ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की और इस प्रकार वैश्वीकरण को उभारने के अपने भविष्यसूचक कार्य की शुरुआत की। जैसे ही ट्रंप उस गृह युद्ध को दबाने का काम शुरू करते हैं जो पहले से जारी है, वो संयुक्त राष्ट्र सोटा नाटो मैसेडोन के फिलिप के साथ एक गठबंधन का प्रयास करेंगे और रोम गाना शुरू कर देगा। ये गठबंधन का प्रयास दो शक्तियों के बीच सर्वोच्चता के संघर्ष में बदल जाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व पैनियम के युद्ध द्वारा होता है। तब पैनियम 13वीं आयत का मार्ग चिन्ह है, जहां रविवार के कानून से पहले होने वाली अंतिम तीव्र घटनाएं शुरू होती हैं। सभी भविष्यद्वक्ताओं ने जिस समय में वे रहते थे उसकी अपेक्षा संसार के अंत के बारे में अधिक बातें की, और यीशु निस्संदेह सब भविष्यद्वक्ताओं में सबसे महान थे। क्रूस से ठीक पहले, जो रविवार के कानून का प्रतीक है और जिसे 16वीं आयत में दर्शाया गया है, यीशु अपने चेलों के साथ पैनियम की यात्रा पर गए। वहां उनका समय और वहां प्रस्तुत की गई उनकी शिक्षाएं शीघ्र आने वाली पैनियम की लड़ाई के साथ मेल खाती हैं। इतिहास भर पैनियम के कई नाम रहे हैं, और मसीह के समय में पैनियम का नाम कैसरिया फिलिपी था।
यीशु और उनके चेले अब कैसरिया फिलिपी के आसपास के नगरों में से एक में आ पहुंचे थे। वे गलील की सीमाओं से बाहर उस प्रदेश में थे जहां मूर्ति पूजा प्रबल थी। यहां चेले यहूदी धर्म के प्रभुत्वशाली प्रभाव से हटकर अन्य जातीय उपासना के और निकट संपर्क में आ गए। उनके चारों ओर अंधविश्वास के वे रूप उपस्थित थे जो संसार के हर भाग में पाए जाते थे। यीशु चाहते थे कि इन बातों का ये दृश्य उनमें अन्य जातियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भाव जगाए। इस क्षेत्र में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने लोगों को शिक्षा देने से कुछ समय के लिए अलग रहने का प्रयास किया और स्वयं को अपने चेलों के लिए और अधिक पूर्ण रूप से समर्पित किया। वे उन्हें उस कष्ट के विषय में बताने ही वाले थे जो उनके लिए प्रतीक्षारत था, पर पहले वे अकेले में चले गए और ये प्रार्थना की कि उनके हृदय उनके वचनों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। उनके पास लौटकर उन्होंने तुरंत वो बात प्रकट नहीं की जिसे वे बताना चाहते थे। ये करने से पहले उन्होंने उन्हें ये अवसर दिया कि वे उनमें अपने विश्वास का अंगीकार करें ताकि वे आने वाली परीक्षा के लिए दृढ़ हो सकें। उन्होंने पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मैं मनुष्य का पुत्र कौन हूँ? दुखपूर्वक शिष्यों को यह स्वीकार करना पड़ा कि इसराइल अपने मसीहा को पहचान नहीं पाया था। कुछ ने तो, जब उन्होंने उसके चमत्कार देखे, उसे दाऊद का पुत्र घोषित किया था। बैतसैदा में जिन्हें भोजन कराया गया था, वे भीड़ें उसे इसराइल का राजा घोषित करना चाहती थीं। बहुत से लोग उसे नबी के रूप में स्वीकार करने को तैयार थे, पर वे ये विश्वास नहीं करते थे कि वो मसीहा है। अब यीशु ने दूसरा प्रश्न किया जो स्वयं शिष्यों से संबंधित था, परंतु तुम मुझे कौन कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। आरंभ से ही पतरस ने यीशु को मसीह माना था। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के उपदेश से जिनके मन में दोष बोध जागा था और जिन्होंने मसीह को स्वीकार किया था, वे जब यूहन्ना को कैद कर दिया गया और मार डाला गया तो उसके कार्य पर संदेह करने लगे, और अब वे इस पर भी संदेह करने लगे कि यीशु वही मसीह हैं जिसके आने की वे इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन चेलों में से बहुत से जिन्होंने बड़ी उत्कंठा से ये आशा की थी कि यीशु दाऊद के सिंहासन पर विराजेंगे, जब उन्होंने देखा कि यीशु का ऐसा कोई इरादा नहीं है तो वे उन्हें छोड़कर चले गए। परंतु पतरस और उसके साथी अपनी निष्ठा से न डिगे। जो कल प्रशंसा करते थे और आज निंदा करते हैं, उनके डगमगाते रवैये ने उद्धारकर्ता के सच्चे अनुयायी के विश्वास को नहीं डिगाया। पतरस ने कहा, तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। उसने अपने प्रभु पर राजसी सम्मान का मुकुट चढ़ने की प्रतीक्षा नहीं की, परंतु उसकी दीनावस्था में ही उसे स्वीकार किया। पतरस ने बारों के विश्वास को व्यक्त किया था, फिर भी चेले मसीह के उद्देश्य को समझने से अभी भी बहुत दूर थे। याजकों और शासकों का विरोध और उनके द्वारा किया गया गलत प्रस्तुतिकरण उन्हें मसीह से तो दूर नहीं कर सका, परंतु इससे वे बहुत उलझन में पड़े। उन्हें अपना मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। उनके प्रारंभिक प्रशिक्षण का प्रभाव, रब्बियों की शिक्षाएं, परंपरा की शक्ति, ये सब अभी भी सत्य को देखने में बाधा बने हुए थे। समय समय पर यीशु से आने वाली अमूल्य प्रकाश की किरणें उन पर चमकती थीं, फिर भी वे प्रायः छायाओं के बीच टटोलते हुए मनुष्यों के समान थे। परंतु उस दिन उनके विश्वास की महान परीक्षा का सामना करने से पहले पवित्र आत्मा सामर्थ्य सहित उन पर ठहरा। थोड़े समय के लिए उनकी आँखें जो देखी जाती हैं से हटकर जो नहीं देखी जाती को निहारने लगीं। 2 कुरिन्थियों 4:18, मानवीय वेश के पीछे उन्होंने परमेश्वर के पुत्र की महिमा को पहचाना। यीशु ने पतरस को उत्तर देकर कहा, शमोन बर योना, तू धन्य है, क्योंकि ये बात तुझे मांस और रक्त ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है प्रकट की है। जिस सत्य को पतरस ने स्वीकार किया था, वही विश्वासी की आस्था की नींव है। उसी को मसीह ने स्वयं अनंत जीवन घोषित किया है, परंतु इस ज्ञान का होना आत्म महिमा मंडन का कोई आधार नहीं था। ये पतरस पर उसकी अपनी किसी बुद्धि या भलाई से प्रकट नहीं किया गया था। मानवता अपने आप कभी भी दिव्य के ज्ञान तक नहीं पहुंच सकती। वह स्वर्ग जितना ऊंचा है तू क्या कर सकता है, अधोलोक से भी गहरा तू क्या जान सकता है। Job 11:8, केवल दत्तक तत्व की आत्मा ही हमें परमेश्वर की गूढ़ बातें प्रकट कर सकती है, जो ना आँख ने देखी, न कान ने सुनी और न मनुष्य के हृदय में आई। परमेश्वर ने उन्हें अपनी आत्मा के द्वारा हमें प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातों को, हाँ परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी खोजती है। 1 कुरिन्थियों 2:9-10, प्रभु का भेद उनके साथ है जो उससे डरते हैं। और ये तथ्य कि पतरस ने मसीही की महिमा को पहचाना, इस बात का प्रमाण था कि वो परमेश्वर से सिखाया गया था। Psalm 25:1, John 6:45, हाँ सचमुच धन्य है तू शिमोन बार योना, क्योंकि मांस और रक्त ने ये तुझ पर प्रकट नहीं किया। यीशु ने आगे कहा, मैं तुझसे भी कहता हूँ तू पतरस है, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। पतरस शब्द का अर्थ है पत्थर, लुढ़कता हुआ पत्थर। पतरस वो चट्टान नहीं था जिस पर कलीसिया की नींव रखी गई थी। जब उसने श्राप और शपथ खाकर अपने प्रभु से इनकार किया, तब अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल हुए। कलीसिया उस पर बनाई गई थी जिसके विरुद्ध अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सके। उद्धारकर्ता के आगमन से सदियों पहले मूसा ने इसराइल के उद्धार की चट्टान की ओर संकेत किया था। भजनकार ने मेरी शक्ति की चट्टान का गीत गाया था। यशाया ने लिखा था, प्रभु परमेश्वर यों कहता है, देखो मैं सियोन में नेव के लिए एक पत्थर रखता हूँ, एक परखा हुआ पत्थर, एक अनमोल कोने का पत्थर, एक दृढ़ नेव। व्यवस्था विवरण 32:4, भजन संहिता 7:7, यशाया 28:16। पतरस स्वयं प्रेरणा से लिखते हुए इस भविष्यवाणी को यीशु पर लागू करता है। वो कहता है, यदि तुमने ये चखा है कि प्रभु अनुग्रहकारी है, उसी के पास आकर जो जीवित पत्थर है, जो सचमुच मनुष्यों द्वारा अस्वीकार किया गया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और अनमोल है, तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक घर के रूप में निर्मित किए जाते हो। 1 पतरस 2:3-5 RV। डाली हुई नींव अर्थात यीशु मसीह के सिवा कोई मनुष्य दूसरी नींव नहीं डाल सकता। 1 कुरिन्थियों 3:11, इसी चट्टान पर यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर और समस्त स्वर्गीय बुद्धिमान प्राणियों की उपस्थिति में और पाताल की अदृश्य सना की उपस्थिति में मसीह ने अपनी कलीसिया को जीवित चट्टान पर स्थापित किया। वो चट्टान वही स्वयं है, उनका अपना शरीर जो हमारे लिए तोड़ा और कुचला गया। इस नींव पर निर्मित कलीसिया पर पाताल के फाटक प्रबल न होंगे। जब मसीह ने ये वचन कहे तब कलीसिया कितनी निर्बल प्रतीत होती थी। वहां तो बस मुट्ठी भर विश्वासी ही थे जिनके विरुद्ध दुष्ट आत्माओं और दुष्ट मनुष्यों की सारी शक्ति लगाई जाने वाली थी। फिर भी मसीह के अनुयायियों को भयभीत नहीं होना था। अपनी शक्ति की चट्टान पर निर्मित होने के कारण उन्हें गिराया नहीं जा सकता था। 6000 वर्षों से विश्वास मसीह पर आधारित रहा है। 6000 वर्षों से शैतानी क्रोध की बाढ़ों और आंधियों ने हमारे उद्धार की चट्टान पर प्रहार किया है, पर वो अड़ेक खड़ी है। पतरस ने वो सत्य व्यक्त किया था जो कलीसिया के विश्वास की नींव है, और अब यीशु ने उसे समस्त विश्वासियों के समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में सम्मानित किया। उसने कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। स्वर्ग के राज्य की कुंजियां मसीह के वचन हैं। पवित्र शास्त्र के सभी वचन उन्हीं के हैं और वे सब इन्हीं में सम्मिलित हैं। इन वचनों में स्वर्ग को खोलने और बंद करने की सामर्थ है। वे उन शर्तों की घोषणा करते हैं जिनके आधार पर मनुष्य स्वीकार या अस्वीकार किए जाते हैं। इस प्रकार जो लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं उनका कार्य जीवन के लिए जीवन की सुगंध या मृत्यु के लिए मृत्यु की सुगंध ठहरता है। उनका कार्य अनंत परिणामों का भार लिए हुए है। उद्धारकर्ता ने सुसमाचार का कार्य व्यक्तिगत रूप से पतरस को नहीं सौंपा। बाद में पतरस से कही गई बातों को दोहराते हुए उन्होंने उन्हें सीधे कलीसिया पर लागू किया, और यही बात सार रूप में 12 से भी कही गई जो विश्वासियों की मंडली के प्रतिनिधि थे। यदि यीशु ने अन्य सबसे ऊपर किसी एक शिष्य को कोई विशेष अधिकार सौंपा होता तो हम उन्हें बार बार इस बात पर विवाद करते हुए नहीं पाते कि सबसे बड़ा कौन है। वे अपने स्वामी की इच्छा के अधीन हो जाते और जिसे उन्होंने चुना होता उसका आदर करते। किसी एक को अपना प्रधान बनाने के बजाय मसीह ने शिष्यों से कहा, तुम रब्बी ना कहलाओ और ना तुम गुरु कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है अर्थात मसीह। मत्ती 23:8-10। हर पुरुष का सिर मसीह से है। परमेश्वर जिसने उद्धारकर्ता के पैरों के नीचे सब कुछ कर दिया, उसे कलीसिया के लिए सब वस्तुओं पर सिर ठहराया जो उसकी देह है अर्थात उसकी वो परिपूर्णता जो सब में सब कुछ भरता है। 1 कुरिन्थियों 11:3, 1 इफिसियों 1:22-23। कलीसिया की नींव मसीह है। उसे अपने सिर के रूप में मसीह की आज्ञा माननी है। उसे मनुष्य पर निर्भर नहीं होना और न ही मनुष्य द्वारा शासित होना है। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि कलीसिया में भरोसे के पद उन्हें ये अधिकार देता है कि वे ठहराएं कि अन्य लोग क्या विश्वास करें और क्या करें। इस दावे को परमेश्वर मान्यता नहीं देता। उद्धारकर्ता कहता है, तुम सब भाई हो, सब प्रलोभनों के प्रति उजागर हैं और गलती कर बैठने की संभावना रहती है। मार्गदर्शन के लिए हम किसी भी सीमित प्राणी पर भरोसा नहीं कर सकते। विश्वास की चट्टान कलीसिया में समित उपस्थिति है। इसी पर सबसे निर्बल भी भरोसा कर सकते हैं, और जो अपने आप को सबसे बलवान समझते हैं वे सबसे निर्बल सिद्ध होंगे, यदि वे मसीह को अपनी सामर्थ्य न बनाएं। जो मनुष्य पर भरोसा करता है जिदेहनी के लिए वे और देह के लिए अपना सहारा बनाता है, वो शापित है। प्रभु चट्टान है, उसका काम सिद्ध है, धन्य है वे सब जो उस पर भरोसा रखते हैं। यिर्मयाह 17:5, व्यवस्था विवरण 32:4, भजन संहिता 2:12। पतरस के अंगीकार के बाद यीशु ने चेलों को आज्ञा दी कि वे किसी से ये न कहें कि वो मसीह है। ये आज्ञा शास्त्रियों और फरीसियों के दृढ़ विरोध के कारण दी गई थी। इसके अतिरिक्त लोग और यहाँ तक कि चेले भी मसीहा के विषय में इतनी गलत धारणा रखते थे कि यदि उसके विषय में सार्वजनिक घोषणा की जाती तो उन्हें उसके चरित्र और उसके कार्य की सच्ची समझ न मिलती। परंतु वो दिन प्रतिदिन अपने आप को उनके सामने उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट कर रहा था, और इस प्रकार वो चाहता था कि वे उसे मसीहा के रूप में सही रीति से समझें। शिष्यों को अब भी एक अपेक्षा थी कि मसीह एक लौकिक राजकुमार के रूप में राज्य करेगा। यद्यपि उसने इतने समय तक अपनी अभिप्रेत योजना को प्रच्छन्न रखा था, वे ये विश्वास करते थे कि वो सदा दरिद्रता और अपरिचितता में नहीं बना रहेगा। वो समय निकट था जब वो अपना राज्य स्थापित करेगा, कि याजकों और रब्बियों की घृणा पर कभी विजय न पाई जाएगी, कि मसीह को उसी की अपनी जाति द्वारा अस्वीकार किया जाएगा, छलिया ठहराकर दोषी ठहराया जाएगा और अपराधी के समान क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। ऐसा विचार शिष्यों के मन में कभी आया ही न था। परंतु अंधकार की सामर्थ्य का समय निकट आ रहा था, और यीशु को अपने शिष्यों के सम्मुख उस संघर्ष को प्रकट करना था जो उनके सामने था। आने वाली परीक्षा का पूर्वानुमान करके वो उदास था। द डिजायर ऑफ एजेस 11:2-9।
दानियल अध्याय 11 का 16वां पद संयुक्त राज्य अमेरिका में शीघ्र आने वाले रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करता है। उस भूकंप की घड़ी से ठीक पहले जो लोग 144,000 में शामिल होने की अभिलाषा रखते हैं, वे अपनी नींद से जगा दिए जाते हैं। उन्हें जो जगाता है वो एक भविष्य सूचक संदेश है। उस समय दो वर्ग प्रकट होते हैं, और जैसा कि 10 कुमारियों के दृष्टांत में दर्शाया गया है, एक वर्ग के पात्रों में तेल है, दूसरे वर्ग के पात्रों में नहीं। दानियल अध्याय 11 के पद 13-15 न केवल रविवार के कानून से पहले की भविष्य सूचक इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे उस संदेश का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो 10 कुमारियों के दृष्टांत के संदर्भ में तेल है, जिसे बुद्धिमान अपने पास रखेंगे ताकि वे परमेश्वर की मुहर प्राप्त करें और महान भूकंप की घड़ी में एक निशान के रूप में ऊंचा उठाए जाए। अब ये लेख समस्त लेखों के चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि इन पदों में जो संदेश दर्शाया गया है वही वो स्वर्णिम तेल है जो दो सुनहरी नलिकाओं के द्वारा नीचे उंडेला जाता है। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
जब तक सत्य का अंगीकार करने वाले लोग शैतान की सेवा करते रहेंगे, उसकी नरकीय छाया उन्हें परमेश्वर और स्वर्ग का दर्शन करने से वंचित कर देगी। वे उन लोगों के समान होंगे जिन्होंने अपना पहला प्रेम खो दिया है। वे शाश्वत वास्तविकताओं को नहीं देख सकेंगे। जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है वो जकरिया अध्याय 3:4 तथा 4:10-1 के दर्शाया गया है। और मैंने फिर उत्तर दिया और उससे कहा, ये दो जैतून की डालियां क्या हैं जो दो स्वर्ण नलिकाओं के द्वारा अपने आप से स्वर्ण तेल उंडेलती हैं? और उसने मुझे उत्तर दिया और कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, नहीं मेरे प्रभु। तब उसने कहा, ये वे दो अभिषिक्त हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास खड़े हैं। प्रभु संसाधनों से परिपूर्ण है, उन्हें किसी भी साधन की कमी नहीं है। हमारे विश्वास की कमी, हमारी सांसारिकता, हमारी खोखली बातें, हमारा अविश्वास जो हमारी बातचीत में प्रकट होता है, इन्हीं के कारण हमारे चारों ओर अंधकारमय छायाएं घिराती हैं। हमारी वाणी और आचरण में मसीह उस सर्वथा मनोहर 10,000 में श्रेष्ठतम के रूप में प्रकट नहीं होते। जब आत्मा निरर्थक दंभ में स्वयं को ऊंचा उठाने पर संतुष्ट हो जाती है, तब प्रभु का आत्मा उसके लिए बहुत कम कर पाता है। हमारी निकटदर्शी दृष्टि छाया को तो देखती है, पर उसके पार की महिमा को नहीं देख पाती। स्वर्गदूत चारों पवनों को थामे हुए हैं। उन्हें एक क्रोधित घोड़े के रूप में दर्शाया गया है, जो बंधन तोड़कर सारी पृथ्वी पर दौड़ जाने को उतावला है, अपनी राह में विनाश और मृत्यु साथ लिए हुए। क्या हम अनंत संसार की ठीक दहलीज पर ही सोए रहेंगे? क्या हम सुस्त, शीतल और मृतप्रायः बने रहेंगे? ओह, काश के हमारी कलीसियाओं में परमेश्वर का आत्मा और श्वास उसके लोगों में फूंकी जाए, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हों और जीवित रहें। हमें ये देखना आवश्यक है कि मार्ग संकीर्ण है और फाटक तंग है, परंतु जब हम उस तंग फाटक से होकर प्रवेश करते हैं, तब उसकी विशालता असीम है। मैन्यूस्क्रिप्ट रिलीजेज वॉल्यूम 20, 217। संपूर्ण पृथ्वी के प्रभु के निकट खड़े हुए अभिषिक्त जनों को वही पद प्राप्त है जो कभी शैतान को आच्छादक करूब के रूप में दिया गया था। अपने सिंहासन के चारों ओर स्थित पवित्र प्राणियों के द्वारा प्रभु पृथ्वी के निवासियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखता है। सुनहरा तेल उस अनुग्रह का प्रतीक है जिसके द्वारा परमेश्वर विश्वासियों के दीपकों को निरंतर भरा रखता है, ताकि वे टिमटिमाए नहीं और बुझ न जाएं। यदि ऐसा न होता कि ये पवित्र तेल परमेश्वर की आत्मा के संदेशों में स्वर्ग से उंडेला जाता है, तो दुष्टता की शक्तियों का मनुष्यों पर पूर्ण अधिकार हो सकता। जब हम उन संदेशों को ग्रहण नहीं करते जिन्हें परमेश्वर हमारे पास भेजता है, तब परमेश्वर का अनादर होता है। इस प्रकार हम उस स्वर्णिम तेल को अस्वीकार करते हैं जिसे वो हमारी आत्माओं में उंडेलना चाहता है, ताकि वो अंधकार में रहने वालों तक पहुंचाया जाए। जब ये पोलाक सुनाई देगी, देखो दूल्हा आता है, उसके भेंट के लिए निकलो, तब जिन्होंने पवित्र तेल ग्रहण नहीं किया है, जिन्होंने अपने हृदयों में मसीह के अनुग्रह को संजोकर नहीं रखा है, वे मूर्ख कुमारियों के समान पाएंगी कि वे अपने प्रभु से मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। अपने आप में उनके पास तेल प्राप्त करने की शक्ति नहीं है और उनका जीवन नष्ट हो जाता है। परंतु यदि परमेश्वर के पवित्र आत्मा की याचना की जाए, यदि हम मूसा के समान विनती करें, मुझे अपनी महिमा दिखा, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला जाएगा। स्वर्णिम नलिकाओं के द्वारा वो स्वर्णिम तेल हम तक पहुंचाया जाएगा, न बल से, न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। धर्म के सूर्य की उज्ज्वल किरणों को ग्रहण करके परमेश्वर की संतानें संसार में ज्योतियों के समान प्रकाशमान होती हैं। रिव्यू एंड हेरल्ड, जुलाई 20, 1879।